मैंने कहा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। मैं खुद भी बिना चुदा कहाँ रह सकती हूँ। तुम्हारा भाई मुझे रोज 2 से 3 बार चूदता है, तब जाकर मेरी चूत की आग ठंडी होती है। हाँ, किसी भी मर्द को काबू में करना हो तो उसे अपनी चूत और मम्मों की झलक तो दिखानी पड़ती है। तो मैं इस बात के लिए दिमागी तौर से तैयार हो जाओ। मनोज से मैं तुम्हारे सामने ही बात करूंगी कि वो शादी करना चाहता है या नहीं। देखो, अगर वो हाँ करे तो अपने कपड़े उतारने में जरा भी मन आनी कानी मत करना, और जाने से पहले अपनी चूत और बगलों की सफाई अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि लड़कों का लंड इन्हीं चीज़ों को देखकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, तुमने अपने पति के बाद किसी और से भी चूत की सेवा करवाई है? अनन्या ने कहा, नहीं भाभी, मैं करवाना तो चाहती थी मगर कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरा साथ पूरी तरीके से दे। इसका मतलब तुम्हारी चूत बहुत भूखी है। इसका इलाज भी है मेरे पास। मेरे पास एक कमर पर बांधने वाली नकली लंड है, मैं उससे तुम्हारी सेवा अभी कर देती हूँ ताकि तुम्हारी कुछ भूख तो शांत हो जाएगी। मैंने अपनी अलमारी से नकली लंड निकाल कर अपनी कमर पर बांध लिया, जिसे देखकर बोली, भाभी तुम तो सच में लंड लिए हुए हो, ये तो पूरा असली का लंड नज़र आ रहा है। देखो, इस पर पूरी लंड के नसें भी नज़र आ रही हैं। मैंने कहा, अब ज़रा इसे चूत में घुसवा लो फिर बोलना। तो दोस्तों, मैंने उसे पूरी तरह से नंगी किया, उसकी चूत पर अपना मुंह मारकर पूरी तरीके से चुसाई की, और जब वो गांड उछालने लगी, उसकी चूत के लिप्स खुलने बंद होने लगे, तो मैंने झट से नकली लंड को उसकी चूत में झटके में डाल दिया। वो बहुत जोर से चीखी क्योंकि उसकी चूत जमाने से बिना चुदी हुई थी और वो नई लड़की की तरह हो चुकी थी। मैंने नकली लंड से अपनी कमर उछाल उछाल कर कस कस के धक्के मारे और वो पूरे मज़े लेकर चुदने लगी। जब उसकी चूत ने पानी छोड़ दिया तो वह निढाल हो गई। मैंने लंड को बाहर की ओर बोली, अब असली लंड के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद मैं अनन्या को अपने साथ लेकर मनोज के घर पर चली आई। मनोज ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उसे कहा, देखो कौन मिलने आई है। तो उसने अनन्या को देखा तो नमस्ते करते हुए बोला, जी मेरी खुशकिस्मती कि आपने इस घर में अपने पाँव तो रखे। तब मैंने कहा, ज़रा बैठने तो दीजिए। वो हम दोनों को अंदर ले गया। आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। बैठने के बाद मैंने कहा, अगर आप चाहो तो ये खुशकिस्मत पाँव आपके घर पर ही रह जाए। मनोज ने कहा, अरे मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी अगर आप ये बात सच हो तो। मैंने कहा, देखो मैं कोई लपेट कर बात तो करने वाली हूँ नहीं, सीधी सादी भाषा में बात करूँगी। अगर आप इसे अपनी जीवन साथी बनाना चाहें तो मैं इसके भाई से बात करूँगी, वरना कोई मजबूरी नहीं है, हम लोग दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। मनोज ने कहा, नहीं रूपा जी, अब आप बात चलाइए, अगर वो मान जाते हैं मैं तो खुद को बहुत लकी मानूंगा। मैंने कहा, ठीक है मैं बात करूंगी, जैसे ही वो 1-2 दिन बाद आते हैं मैं बात करूंगी, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बात मान जाएंगे। मैं समझती हूँ कि शादी पक्की ही समझिए। अच्छा, अब आप लोग एक दूसरे से बातें करिए, मैं घर जाती हूँ, आप लोग लंच तक आ जाइएगा। ये कहकर मैंने अनन्या को अलग से कहा, अगर मनोज कुछ करना चाहे तो थोड़ी नानुकुर करके कर लेने देना, मुझे पूरा भरोसा है तुमको जैसे ही वो नंगी देखेगा पूरा फिसल कर तुम पर लट्टू हो जाएगा। और मैं दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई। अब आगे की अनन्या से सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपा भाभी की ननद अनन्या अब आगे की कहानी सुनाती हूँ। रूपा के जाने के बाद मनोज ने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बोला, आपने सुन ही लिया होगा जो मैंने रूपा से कहा, अगर आपकी पसंद कोई और है तो आप बिना झिझक कर बोल दें, मैं चुप रहूँगा। मैंने तो ये सोचकर कहा था कि हम दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती है, दोनों के लाइफ पार्टनर्स हमें बीच राह में छोड़कर चले गए। तो मैंने कहा, अगर मुझको ना ही बोलनी होती तो मैं यहाँ किस लिए आती, मैं कुछ भी कहने से पहले आपके विचारों को सुनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि मेरा अगला साथी मुझसे कुछ ऐसी बातें पूछे जिसका जवाब देने में मुझे अच्छा ना लगे। आप भी जानते हैं कि मेरे पति की डेथ हो चुकी है और मैं विधवा हूँ, मेरे को सेक्स का अनुभव भी है, ऐसे ही आपके साथ भी है। अब अगर ज़िंदगी भर का साथ बनाकर रहना है तो किसी से पुरानी बातें पूछकर उन यादों को जिंदा ना किया जाए, हमें सब कुछ भूलकर आगे का सफ़र तय करना होगा। मनोज ने कहा, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस पर मैंने कहा, शादी की हाँ करने के लिए मेरी एक कंडीशन है। तो उसने कहा, बताइए बताइए, अगर मेरे लिए संभव हुआ तो मैं बिना झिझक के आपकी कंडीशन को मान जाऊँगा। मैंने कहा, अब तक आपने जो भी किया उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मगर आज के बाद आप पूरी तरह से मेरे प्रति सिंसियर रहेंगे और वैसे ही मैं भी आपके साथ रहूंगी। उसने मेरे हाथों को पकड़कर कहा, लीजिए, ये इंसान आपसे वादा करता है कि आज के बाद किसी और की तरफ नजर नहीं जाने दूंगा। मैंने भी उसके हाथों को चूमकर कहा, मेरा भी आपसे यही वादा है, उसने मेरे होठों को चूमकर कहा। हाथों से नहीं, होठों से वादा किया जाता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी उसके होठों को अच्छी तरह से चूमा और हल्की सी मुस्कुराहट बिखरते हुए पूछा, अब ठीक है? उसने आंख दबाते हुए कहा, हाँ कुछ कुछ तो ठीक है, मगर मगर क्या? तब उसने मुझे अपनी बाहों में भींचते हुए कहा, इस तरह से। मैंने कहा, आप जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। उसने कहा, अगर जरूरत पर आओगी तो पता है ना कहाँ तक जाएंगे। मैं समझ चुकी थी और चुप रह गई, मगर वो नहीं रुका। उसने मेरे मम्मों को कपड़े के ऊपर से दबाना शुरू किया। मैंने कहा, ये सब शादी के बाद, अभी नहीं। इस पर मनोज बोला, शादी कौन सी कल हो जाएगी, अभी तो तुम्हारे भाई से भी हाँ करवानी है, फिर उसके बाद भी टाइम लगेगा। तब तक रोटी नजर ना आए तो भूखे को भूख लगी होने पर भी वेट करना पड़ता है, मगर जब रोटी सामने आ जाए तो उससे रुका नहीं जाता। तुम मेरे सर पर हाथ रख कर बोलो, क्या मैं गलत हूँ? मैंने कहा, नहीं तुम गलत तो नहीं हो, मगर फिर भी रोटी को थाली तक तो आने दो ना। उसने कहा, वो तो आ चुकी है, मगर थाली से उठाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। मैं इससे पहले कुछ बोलती, उसने मेरे कपड़ों में अंदर हाथ डालकर मेरे मम्मों से खेलना शुरू कर दिया। मुझे ना रूपा भाभी की कही हुई बात याद आ गई कि एक दो बार ना नुकुर करने के बाद वो जो करे उसे करने देना। मैं उसको कहती रही कि क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा। तब उसने कहा, कहाँ से कोई आ जाएगा, तुम्हारी चौकीदार ही तुमको भूखे शेर के सामने परोस कर गई है। उसे क्या नहीं पता कि लड़का और लड़की जब अकेले हों तो दोनों पूरी तरह से भूखे तो क्या करेंगे। मैंने कहा, मनोज अभी ये सब ठीक नहीं, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और मैंने हथियार डाल दिए। इस बार जब उसने मेरे होठों को चूमा तो मैंने भी उसका साथ दे दिया। अब उसने मेरे कपड़े उतार दिए और धीरे धीरे मेरी चड्डी तक पहुंच गया। चड्डी उतरते ही वो तो जैसे मेरी चूत पर टूट पड़ा। कुछ देर बाद मुझसे बोला, सच सच बताना, चूत की सफाई आज ही हुई है क्या? तुमने खुद किया, रूपा ने कहा तुमसे? मैंने कहा, हाँ रूपा ने कहा था। तो बोला, तुम्हारी भाभी बहुत होशियार है, उसने मेरे लंड का इंतजाम करके ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं कुछ नहीं बोली, बस उसका लंड सहलाने लगी। ये देखकर उसने अपने कपड़े भी उतार दिए। जैसे ही वो नंगा हुआ तो मैंने देखा कि उसका लंड मेरे पहले पति से बहुत मोटा और लंबा था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने लंड हिलाते हुए कहा, अब इसे अपनी चूत का रस पिलाओ। मैंने कहा, शर्म नहीं आती इस तरह बोलते हुए? वो बोला, अच्छा होगा तुम भी जल्दी सीख लो, वरना हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। शादी होती ही लंड और चूत के लिए है, तुम्हें लंड चाहिए, मुझे चूत। हाँ बोनस में मुझे दो मम्मे और मिल जाएंगे। जब तुम लंड और चूत बोलोगी तो देखना तुम्हारे मम्मों का ये लंड कितना उछालेगा। मैं चुप हो गई और कुछ ना बोली। उसने कहा, बोलो ना अपने मुंह से कि आइए मेरे लंड राजा, आज तुमको ये चूत बुलाती है, तब देखना कितने झटके मारता हो ये लंड चूत तक पहुंचेगा। मुझको बार बार कहकर उसने मुझे पूरी बेशर्म बनाकर मुझसे कहलवा कर ही छोड़ा कि लंड राजा आ जा। मगर मनोज ने ठीक ही कहा था, मेरे ये कहते ही उसका लंड उछल उछल कर बेकाबू होने लगा। चूत के पास आकर उसके मुंह को चूमने लगा। मेरी चूत कुछ देर पहले ही नकली लंड से चूत कर आई थी, इसलिए उसे अपना मुंह खोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। मेरी चूत ने मनोज के पूरे लंड को अपने अंदर निगल लिया। लंड के धक्के चूत पर और चूत के धक्के लंड पर दोनों तरफ से पड़ रहे थे। ये चुदाई का काम बहुत देर तक चला। फिर मुझे लगा चूत के अंदर लंड कुछ ज्यादा ही अकड़ रहा है, तो मैं समझ गई कि वो चरम पर आ गया। बस तभी लंड ने अपना मुंह खोला और चूत के अंदर अपना फुहारा छोड़ दिया। उस गर्म पानी के चूत में लगते ही चूत तो मानो अपनी खुशी की हदें पार कर रही थी। कुछ देर इस तरह से रहने के बाद लंड महाराज अब ढीले होकर चूत से बाहर आ गए। इस समय लंड ऐसे लटका हुआ था जैसे उसमें जान ही न बची हो। मनोज ने कहा, अभी इसका दिल नहीं भरा, देखना कुछ ही मिनट में फिर से तुम्हारी चूत में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने कहा, देखती हूँ। दूसरी बार की जुदाई शुरू हुई तो मनोज ने कहा, अब तुम अपनी चूत को लंड पर चढ़ाओ। मैं लंड पर बैठ गई और धीरे धीरे धक्के लगाने लगी। तब वो बोला कि ऐसे होती है जुदाई, धक्के मारो ताकि कमरे में फट फट की आवाजें आए। मगर जब मुझसे नहीं हुआ तो उसने मुझे नीचे करके चूत की धज्जियां उड़ा दी। कमरे में बस फक 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 की आवाजें आ रही थी। यार अब की बार लंड बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर जितनी भी उछल कूद कर ले, आखिर तो उसका पानी निकलना ही था। जैसे ही जुदाई खत्म हुई, रूपा का फोन आया और बोली, लंच तैयार है, जल्दी से आ जाओ। मैंने मनोज से कहा तो बोला, चलो चलते हैं, मगर असली लंच डिनर तो यही है। फिर हम दोनों अपने घर आ गए। मैं किचन में गई तो रूपा ने मुझसे पूछा कि कुछ हुआ या नहीं। मैंने कहा, ये पूछो क्या नहीं हुआ, कुछ बाकी नहीं बचा, अब तो मुझे पिल दे दो खाने के लिए। रूपा ने कहा, उसी को कहो वो ला कर देगा। मैंने कहा, हाँ ये भी ठीक है। खाना खाने के बाद हम तीनों फिल्म देखने गए और रात को होटल से खाना खाकर ही वापस आए। अब आप मेरी भाभी रूपा से आगे की कथा सुनिए, और आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। तो मैं हूँ रूपा, और मैंने अनन्या से पूछा, बताओ कहाँ सोना है, मेरे पास या मनोज के पास। ये बात शायद मनोज ने सुन ली तो बोला, अनन्या आज मेरी मेहमान है, तुम उसको कल अपने पास रखना। मैंने कहा, ठीक है, अगर मेरी ननद का पूरा ख्याल रखना तो कई दिनों से भूखी प्यासी है। मनोज ने कहा, उसकी चिंता तुम छोड़ दो, अपने पति से बात करके उसको हमेशा के लिए मेरे घर भेज दो। मैंने कहा, ठीक है। घर आकर मनोज अनन्या को लेकर अपने घर चला गया, जहाँ आज रात दोनों ने रात को रंगीन करना था। अगले दिन मैंने उसे फ़ोन किया कि नाश्ते के लिए आ जाओ। फ़ोन मनोज ने उठाया तो बोला, नाश्ता तो पूरी रात हो रहा था, अब आ जाके आपकी ननद रानी को नींद आई है, जैसे ही उठेगी मैं उसे लेकर आऊँगा, शायद तब तक लंच का टाइम भी हो जाए। मैंने मनोज से कहा, ज़रा दूसरे कमरे में आकर बात करो। तो बोला, अच्छा रुको। फिर बोला, हाँ कहो। मैंने कहा, मेरा क्या, मैं भी भूखी हूँ, अनन्या के जाने के बाद तुम्हें पूरा खाना खिलाऊंगा ना। मैंने कहा, ओके। शनिवार रविवार दो दिन पूरी तरह से चिदवाकर अनन्या वापस चली गई। मैंने फ़ोन पर ही अशोक से शादी की बातें की तो वो सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसकी बहन मान गई। अशोक ने कहा, मेरे आते ही जो भी पहली तारीख निकलेगी मैं उसी में शादी कर दूंगा। अनन्या के जाने के बाद अशोक को वापस आने में अभी दो तीन दिन और लगने थे। मैंने मनोज से कहा, आज तो मेरे घर आओगे या मैं तुम्हारे घर आऊँ। तो बोला, मैं ही आता हूँ। रात होने से पहले वो आ गया और डिनर करने के बाद बेडरूम में चला गया। कुछ देर बाद मैं भी वहाँ पहुँच गई और उससे बोली, अब सुनाओ अनन्या को कैसे फुसलाया और उसकी चूत में अपना माल कैसे डाला। उसने कहा, सब तैयारी तो तुमने ही करवाई थी, उसकी चूत को चमका कर भेजा था ना मेरे पास। ऐसी चमकीली फिसलती हुई चूत पर कौन नहीं फिसलेगा। कई दिनों से लंड की भी भूखी थी, ऊपर से नखरे कर रही थी और अंदर से पूरा लंड चूत के अंदर करवाना ही नहीं चाहती थी। उसको पूरा गर्म करके चूत को पूरी रसीली बना दिया तो टांगे खोलकर लंड के लिए आ गई। पर पहले मैंने उसे अपने मुंह से जोड़ा जिससे उसकी चूत फड़कने लगी। चूत पूरा इशारा देने लगी कि लंड डालो जल्दी से। मैंने जरा भी देर नहीं लगाई और पूरा लौड़ा उसकी चूत में डाल दिया। जैसे ही लंड अंदर गया, वो गांड उछाल उछाल कर लंड को अंदर करवाने लगी। इसके बाद वो मस्त हो गई और मुझसे चुदवा कर ठंडी हो गई। उसकी चूत मेरे लंड लेने के हिसाब से फैल गई थी।